पूरी दुनिया इस समय चीन के कई बिलियन डॉलर प्लान की चर्चा कर रही है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, जिससे एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच व्यापारिक रास्ता खुलेगा। यूं हजारों साल पहले एक ऐसा रास्ता था जो एशिया के देशों को यूरोप से लगे भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों को जोड़ता था। दुनिया आज भी इसे सिल्क रूट के नाम से जानती है। तो अब इसी ऐतिहासिक नए रास्ते की बात है जो 65 देशों के बीच में से निकलेगा, लेकिन इसे लेकर दुनिया के कुछ देशों में चिंताएं भी हैं और भारत भी उनमें से एक है। तो इसी पर बात की है मेलबर्न में स्थित राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समीक्षक रवि वाजपेयी से कि भारत की चिंता क्या है।
अनिता जी, पहला तो ये कि ये एक, जिसे हम वन बेल्ट वन रोड कहते हैं, ये आपने बताया ऐतिहासिक रेशम मार्ग या सिल्क रोड को दोबारा पुनर्जीवित किया जा रहा है
जी।
और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है चीन की, जिसमें चीन यह चाहता है कि न केवल वो अमेरिका के वैश्विक स्तर पर पीछे हटने की जगह को भरे, बल्कि उस जगह पर उस तरह स्थापित हो सके जिस तरह अमेरिका किसी समय रहा था
जी।
अब इस वन बेल्ट वन रोड को बताया जा रहा है कि जैसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देशों को भारी मात्रा में सहयोग देकर उनके साथ सैन्य संबंध स्थापित किए थे, चीन भी वही करना चाहता है, लेकिन वो सैन्य संबंध नहीं स्थापित कर रहा है जैसा वो कम से कम कहता है
जी।
तो उसका मानना यह है कि हम अपने देश से शुरू करके, जैसा आपने बताया, भूमध्य सागर तक
जी,
सड़क मार्ग बनाएंगे और समुद्री मार्ग बनाएंगे जो कि अफ्रीका होते हुए पूरे हिंद महासागर का चक्कर लगाकर अफ्रीका पहुंचकर फिर वहां से स्वेज कैनल से निकल करके आगे जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी योजना है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो इसके पीछे सोच है वो बड़ी विशाल है। ये तो एक बात हुई। आपने पूछा कि आखिर भारत को इससे क्या चिंता हो सकती है, तो मुझे लगता है भारत कहता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक तो इसके नाम में कुछ अड़चन है, जो सड़क मार्ग है उसको बेल्ट कहते हैं, जो समुद्री मार्ग है उसको रोड कहते हैं। खैर ये तो एक जुमला हुआ, इसको छोड़ दिया जाए। भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस वन बेल्ट वन रोड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हिस्सा जो है, जो चीन ने स्वयं माना है अपने व्हाइट पेपर में, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है
जी,
जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी जगह से गुजरता है जिसको लेकर भारत की चिंताएं हैं। चिंता यह है कि कश्मीर के रास्ते से या एक ऐसे भौगोलिक हिस्से से जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों के दावे हैं। हम जब कभी भी कश्मीर समस्या की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कश्मीर समस्या जम्मू कश्मीर के प्रांत में भारत के भीतर है। अरे भारत का भी तो दावा है दूसरी तरफ
जी।
वो भी कश्मीर समस्या का अंग है, उस पर हम नहीं कहते, लेकिन भारत ने इस बार शायद थोड़ा जोर देकर कहा कि चूंकि ये विवादित क्षेत्र है, इसमें आप अगर कोई काम करते हैं तो आप मेरी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल क्लेम को नहीं मानते हैं, जो बात हमें पसंद नहीं आ रही है, इसका हम विरोध करते हैं
जी।
इसके अलावा और अन्य पक्ष है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसमें सैनिक भी जा रहे हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि ग्वादर तक हम रास्ता बनाए, फिर वहां पर एक समुद्र का पोर्ट बनाए और फिर आगे पीछे उसमें सैन्य सामग्री भी जा सकती है, सैनिक भी रह सकते हैं, वो नौसेना का एक अड्डा भी बन सकता है। ये चिंताएं भारत की हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता भारत की यह है कि आप मेरी जो संप्रभुता है उसको नहीं मान करके ये प्रोजेक्ट क्यों ले जा रहे हैं।
जिन जिन देशों से, जिन जिन रास्तों से ये लगकर कॉरिडोर पूरा बनेगा, वो लोग वापस चीन को भुगतान भी करेंगे, तो फायदा तो चीन को ही होने वाला है अंततः, और बाकी देशों को पैसा देना ही पड़ेगा। क्या ये एक और कारण भी हो सकता है कि जो चीन का विदेशी बैंकों में पैसा है उसको वो निकाल तो सकते नहीं है, तो क्या इस प्रोजेक्ट में लगने से उस पैसे का भी प्रयोग हो जाएगा और पैसा वापस अपने देश में पहुंच गया, कुछ ऐसी स्थिति भी है क्या?
जी, पहली बात तो ये कि केवल पाकिस्तान में ही ये 60 बिलियन का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, 56 बिलियन कहा जा रहा है, और जो पूरा ढांचा बन रहा है वन बेल्ट वन रोड का वो 3000 बिलियन यानी 3 ट्रिलियन पहुंचेगा, ऐसा मानना है लोगों का। 900 बिलियन तो चीन अभी ही उसके बारे में मान चुका है कि हम इसमें निवेश करेंगे, तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इसमें लगाया जा रहा है। इस पैसे के पीछे दो चीजें हैं, एक तो ये कि चीन में जितने भी लोग जाते हैं सब ये मानते हैं कि हर 2 महीने में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कोई नई सड़क, नया एयरपोर्ट, नया शहर है बिल्कुल।
जी
अब ये हो रहा है कि उस तरह के निवेश के अवसर चीन में कम हो रहे हैं, लेकिन जो वहां पर उत्पादन करने वाली कंपनी है, फैक्ट्रीज है, उनके यहाँ सीमेंट का, कांच का, इस्पात का और तरह की चीजों का उत्पादन उसी रफ्तार से अगर चलेगा तो इस सामान की खपत कहाँ होगी? तो खपत के लिए हमें ऐसी जगह ढूंढनी भी जहां खपत की जा सके। तो ये कहाँ होगा? उन देशों में होगा जिनके पास अभी विकास के कुछ स्थान बचे हुए हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा दक्षिण एशिया आता है, दक्षिण पूर्व एशिया आता है, मध्य एशिया आता है, जिस जिस रास्ते से ये वन बेल्ट वन रोड गुजर रही है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इनको अवसर मिलेंगे। तो ये तो अपने स्थानीय उत्पाद को बाहर खपाने का रास्ता हुआ एक, और दूसरा जिस मात्रा में चीन के पास फाइनेंशियल रिजर्व है जैसा आपने बताया
जी,
उसको केवल रख के वो क्या कर सकते हैं? तो उससे हम निकालें, निवेश करें। निवेश से एक तो हमें उस निवेश पर कुछ वापस मिलेगा, जैसा आपने बताया कि जिन जिन देशों में ये पैसा जाएगा वो मुफ्त में नहीं बांटा जाएगा, उन्हें वापस करना होगा। पाकिस्तान में अभी शंकाएं दी जा रही हैं कि जो 56 बिलियन आएगा 30 साल के भीतर उन्हें 90 बिलियन लौटाना होगा, मतलब हर साल $3 बिलियन की उनके पास पैसे होने चाहिए लौटाने के लिए पाकिस्तान के पास, और ये सारे देशों के साथ होगा। क्या वो लौटा पाएंगे, नहीं लौटा पाएंगे, इसमें बड़ी दुश्चिंताएं हैं
जी।
और ये भारत ने भी उठाया था, और ये दुश्चिंताएं पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि हमने देखा श्रीलंका में ये हो चुका है
जी।
जब एक बहुत बड़े पोर्ट को हम्बनतोता में बनाने की बात हुई, श्रीलंका उसके पैसे को न लौटा पाया, न उसका ऋण के भुगतान के जो पैसे थे वो दे पाया
जी।
तो इन्होंने कहा कि तब ये जमीन जो आपकी पड़ी है वो हमें दे दीजिए। उसके बाद वहां हंगामा हो गया। ये हंगामा किसी भी देश में कभी भी हो सकता है। अगर आप उनके पैसे लौटाने में असमर्थ होंगे तो क्या चीन आपको ऋण माफ कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कोई भी देश कर पाएगा। तो उसके एवज में आप क्या दे पाएंगे? और वो एवज में देने वाली बात जो है उसके कुछ कुछ उसकी दुश्चिंता है, सबको है, भारत को भी है, अन्य देशों को भी होंगी, अभी नहीं तो आगे होंगी अवश्य
जी। तो यानी भौगोलिक स्थिति ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ेगा वैश्विक तौर पर।
जी हाँ बिल्कुल पड़ेगा। और ये मानकर चलना कि कोई विदेश की धन या कोई विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी आपके यहाँ पर सामान बनाकर चली जाएगी और आपको वो एक तरह से गिफ्ट देकर चली जाएगी, ये संभव अब नहीं है। ये चीन के लिए भी नहीं है, आज के दौर में अमेरिका के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। एक हद तक वो कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट केवल इसलिए कि हम सदाव्रत करें, ये संभव नहीं है
जी। रवि जी, आपकी ये पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
धन्यवाद अनिता जी।